नमस्कार श्रोताओ, छिंदवाड़ा वालिन से आपका दोस्त योगेश। आज पूरा देश शहीद आजम भगत सिंह जी की 155वीं जयंती मना रहा है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में शीर्ष पर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी थे। वे बचपन से ही देशभक्ति से प्रेरित थे, जिन्होंने लोगों से स्वतंत्रता को लेकर बड़ी कहानियों के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता संघ के मार्गदर्शन पर चले। और जो लोग, उनका यह भी कहना था कि जो लोग बहरे हैं उनको सुनाने के लिए बमों की आवाज आवश्यक है। उनका बहुत प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद था। आज हमारे साथ भगत सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनुप सर। अनुप सर, मोबाइल रहने पर स्वागत सर आपका।
नमस्कार योगेश भाई
जी। सर सर भगत सिंह जी के जो भी क्रियाकलाप है, आज लोगों को बहुतायत में बहुत कम पता है, ऐसा क्यों सर, क्या कारण है?
देखिए, भगत सिंह के बारे में लोगों को बहुत कम पता है, यह तो एक आश्चर्य का सवाल है और ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि भगत सिंह केवल हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के क्रांतिकारियों के सिरमौर है। और अगर लोग भगत सिंह के बारे में नहीं जानते हैं, यह अपने देश और उन लोगों का दुर्भाग्य है, भगत सिंह के विचारों का दुर्भाग्य नहीं है। पहला कारण है कि अभी जो नया पीढ़ी आ रही है, उस नई पीढ़ी के पास क्रांतिकारियों के इतिहास को नहीं पहुंचाने दिया जा रहा है। दूसरा है कि बहुत बड़ी मात्रा में, चाहे जो भी सरकारें आई आजादी के बाद, उन्होंने इतिहास को मिटाने का प्रयास किया। क्योंकि भगत सिंह किसी सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, भगत सिंह हमेशा सरकार के खिलाफ और व्यवस्था के खिलाफ बोलते थे। तो भगत सिंह के जो साहित्य है, भगत सिंह के जो विचार है, अगर उनको पढ़ा जाए तो आज की जो सरकार है यह सिद्ध हो जाएंगी कि यह कारपोरेट की सरकार है, यह पूंजीपतियों की सरकार है, यह साम्राज्यवादियों के सामने घुटना टेकने वाली सरकार है। मैं सरकार शब्द कहने का मतलब केवल आज की सरकार ही नहीं कर रहा हूँ, इसके पूर्व की सरकारों का भी वर्णन कर रहा हूँ। तो भगत सिंह को इसलिए सरकारों ने पढ़ने नहीं दिया। दूसरा कि आप यह देखिए कि भगत सिंह की जयंती है और भगत सिंह का सादर दिवस 23 मार्च को होता है। कुछ संगठन ही इसको मना पा रहे हैं, कुछ लोग ही इसको मना पा रहे हैं। और बाकी कोई सत्ताधारी नेता का जन्मदिन आ जाए तो देखिए कि आपका फेसबुक से लेकर के व्हाट्सएप से लेकर के जितनी सोशल कॉन्टेक्ट है वो सारे भर जाते हैं वो सत्ताधारी नेताओं के जन्मदिन और मरण दिन से। तो यह तो अपने आप में एक हास्यपद है कि आप उस व्यक्ति को बुला रहे हैं जिस व्यक्ति ने आपको आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और आप उस व्यक्ति को अपना रहे जो आपके आजादी को मिटाने का काम कर रहा है। यानी आज के जो नेता है वो आजादी को मिटाने का काम कर रहे, जनता का शोषण कर रहे। तो यह कहना कि भगत सिंह के बारे में लोग नहीं जानते, यह एक आश्चर्य है और यह बहुत बड़ा सवाल नहीं हो सकता है। क्योंकि भगत सिंह को नहीं जानना मतलब अपने 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 इतिहास को नहीं जानना है, अपने क्रांतिकारियों को नहीं जानना। हम लोगों के तो मानस पे, हम लोगों के दिलों और दिमाग में भगत सिंह बैठे, हम लोग तो उनके विचारों पे चलते हैं। और हम लोग जैसे लोग, हजारों लोग भगत सिंह को हमेशा मानते रहते हैं और हमेशा मानते रहेंगे।
सर जी, भगत सिंह के सिद्धांतों पर आज कैसा देख रहे सर देश को?
भगत सिंह के अगर दो सिद्धांत को ले लिया जाए, उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और दूसरा कहा कि इनकलाब जिंदाबाद। बाकी सिद्धांतों पर अभी चर्चा न किया जाए, केवल दो सिद्धांत पे ले लिया जाए तो आज ये दोनों सिद्धांतों को सरकार समाप्त कर रही है। और सरकार किसकी है, अगर हम भगत सिंह को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि यह सरकार जो है कारपोरेट घरानों की सरकार है, यह सरकार आम जनता की नहीं है। भगत सिंह की जो लड़ाई थी वह आम जनता के लिए थी, वह चाहते थे कि आम जनता को अधिकार मिले, आम जनता के पक्ष में सारी व्यवस्थाएं हो। लेकिन आज की जो सरकार है वो आम जनता के लिए नहीं है। भगत सिंह ने कहा इनकलाब जिंदाबाद, इसका मतलब था कि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं बल्कि संपूर्ण परिवर्तन होना चाहिए। एक क्रांति आनी चाहिए, ऐसी क्रांति जो शोषण को मिटा दे, ऐसी क्रांति जो बराबरी के समाज का निर्माण कर दे। लोग कहते हैं भगत सिंह क्रांतिकारी थे हथियारों के, भगत सिंह हिंसक क्रांति के पक्षधर नहीं थे। आप 1930 के आसपास भगत सिंह को पढ़िए तो भगत सिंह हिंसा से दूर जाकर के खड़ा होना चाहते थे, और भगत सिंह की क्रांति हिंसा से नहीं थी। अगर हिंसात्मक होते भगत सिंह, शुरुआती दिनों में होंगे लेकिन अपने आखिरी दिनों में अगर हिंसात्मक होते तो असेंबली में वो ब्लैंक बम नहीं फेंकते, वो RDX वाला बम फेंक देते जो अंग्रेज थे वहां पे, सारे लोग समाप्त हो जाते। लेकिन भगत सिंह ने RDX बम फेंका, क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि क्रांति का मतलब अहिंसा, क्रांति का मतलब हिंसा नहीं होता है, क्रांति का मतलब बदलाव होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि दुनिया के साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, यानी वो चाहते केवल हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि दुनिया को शोषण मुक्त समाज बनाना चाहते थे। दुनिया के अंदर जो साम्राज्यवाद है, दुनिया के अंदर जो पूंजीवाद है, उसको वो मिटाना चाहते थे और उसके जगह पर एक बराबरी और समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। तो आज की जो सरकारें है, ये दोनों सिद्धांतों, क्रांति इनकलाब जिंदाबाद को तो हटा ही दे रही है, क्रांतिकारी परिवर्तन करना ही ना चाहती है। और दूसरा कि आज की सरकार अपने देश में ही देख लिया जाए तो पूंजीपति और कारपोरेट घरानों की सरकार बनकर रह गई है, आम जनता की सरकार नहीं बनकर रह गई। तो भगत सिंह के अगर यह दो सिद्धांतों को देख लिया जाए तो सरकार उन दोनों सिद्धांतों को मिटाना चाहती है, क्योंकि भगत सिंह के सिद्धांतों से सरकार को खतरा है और आम जनता को फायदा है। तो यह सरकार आम जनता की नहीं है, यह सरकार कारपोरेट घराना और पूंजीपतियों की सरकार है, तो इसको हमेशा भगत सिंह के विचारों से खतरा रहता है।
सर, भगत सिंह जी के सिद्धांतों पर किस तरीके से आजाद हुआ देश और आज उनके सिद्धांत कितने देखते हैं जमीन स्तर पर आप?
वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भगत सिंह के सिद्धांत अगर नहीं होते तो देश आजाद नहीं होता। देश के आजादी में अगर 1 मिनट योगेश भाई, देश के आजादी में दोनों पक्ष को देख लिया जाए, एक उग्र पक्ष और एक नरम पक्ष, दोनों पक्षों का उद्देश्य था कि देश को आजाद किया जाए, देश के अंदर बराबरी के समाज का निर्माण किया जाए, देश से शोषण को मिटाया जाए और देश से विदेशी झंडा को उखाड़ के फेंका जाए। रास्ता और साधन बेशक उनके अलग अलग थे लेकिन उद्देश्य एक था। परंतु आज जो भगत सिंह के सिद्धांत है, आज जो सरकारें काम कर रही है, वो भगत सिंह के सिद्धांतों के पूरी तरीके से विपरीत जाके काम कर रही है। और केवल भगत सिंह ही न कहिए, जो भी क्रांतिकारी थे उस समय, जो भी अपने जननायक थे आजादी के, उनके सिद्धांतों के विपरीत जाकर के सरकार काम कर रही है। तो भगत सिंह के सिद्धांतों को जमीन पे लाने का काम, तो यह काम गांव गांव से होना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह तो गांवों के पक्ष में थे। भगत सिंह तो चाहते थे कि गांवों से विकास की शुरुआत हो, वो गांव को जगाना चाहते थे। तो भगत सिंह के विचारों को, सिद्धांतों को अगर जमीन पे पहुंचाना है तो हम सभी को उसके रास्ते पे चलना होगा। आज का नौजवान क्या कर रहा है? भगत सिंह भी चाहते तो किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बन जाते और बहुत बड़े सत्ता में चले जाते, लेकिन भगत सिंह ने उन्होंने नहीं किया। भगत सिंह ने कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। आज का नौजवान क्या कर रहा है? राजनीति में तो जाता है लेकिन राजनीति को टिकट पाने के लिए जाता है, और टिकट मांगते मांगते, टिकट पाते पाते अपनी पूरी जिंदगी एक नेताओं की चटकर्ता करने में समाप्त कर देता है। तो इस तरीके से भगत सिंह के सपनों को जमीन पे नहीं उतारा जा सकता। भगत सिंह के सपने को जमीन पे उतारना है तो त्याग समर्पण की जरूरत है, न कि राजनीति को साधन समझने की जरूरत। भगत सिंह राजनीति को साधन समझते थे, और जरूरत है कि आज के नौजवान, चाहे आज के लोग, राजनीति करने वाले लोग राजनीति को साधन समझे, उसको साध्य समझ करके उसमें लालच भरी इच्छा से ना जाए, त्याग की इच्छा से जाए।
सर, क्या भगत सिंह जी का मार्क्सवाद किस तरीके से देखते हैं आज?
भगत सिंह बाद में मार्क्सवादी बने, और वो भी टोटली मार्क्सवादी नहीं थे भाई। मार्क्सवाद का मतलब था कि मजदूरों से क्रांति होगी और उससे हम सफल हो जाएंगे। भगत सिंह तो उधर गए नहीं, तो ये नहीं कहेगी कि केवल मजदूरों से क्रांति हो जाएगी, उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया के स्तर पर क्रांति होगी और हर वर्ग उस क्रांति में हिस्सा लेगा, तब जाकर के होगा। तो भगत सिंह ठीक है साम्यवादी थे, लेकिन भगत सिंह के साम्यवाद और आज के साम्यवादी में बहुत बड़ा अंतर है। आज के साम्यवादी भी सत्ता के पीछे भागने का प्रयास कर रहे, भगत सिंह का जो साम्यवाद था सत्ता के पीछे भागने का नहीं था। भगत सिंह का साम्यवाद एक उद्देश्य था, एक अंतिम छोर था कि वहां पे समाज, बराबरी के समाज का निर्माण हो जाएगा, वहां पे जाति धर्म मजहब ये सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज के जो साम्यवादी है, जो मार्क्सवादी अपने आप को कहते हैं, उनका अध्ययन करिए तो अपने ही देश में देख लीजिए, भारत में तो कभी कांग्रेस के साथ भाग जाते हैं, कभी सपा के साथ भाग जाते हैं, कभी विपक्षी एकता का काम करते हैं, कभी किसी के साथ चले जाते हैं। उनकी ये सोच रहती कि मैं कैसे भी सत्ता में हिस्सेदारी करूं, भगत सिंह का यह सोच नहीं था। तो भगत सिंह बहुत बड़े मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं थे, मार्क्सवाद को पढ़ते थे, लेकिन भगत सिंह का सपना था कि इनकलाब आए, परिवर्तन आए और बदलाव आए।
सर, क्या भगत सिंह जी का साम्यवाद किस तरीके देख रहे हैं आज के परिवेश में?
आज के परिवेश में साम्यवाद तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि आज के जो साम्यवादी है खुद ही भगत सिंह की कब्र खोद रहे हैं। भगत सिंह जी साम्यवाद का सपना देखे थे, वह समाज के अंतिम वर्ग के लिए था कि अंतिम वर्ग का भी विकास होगा। परंतु आज के जो साम्यवादी है वह केवल कहते हैं, केवल वोट लेने का काम करते हैं, केवल लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, परंतु भगत सिंह के साम्यवाद पे नहीं जाते। अगर भगत सिंह के साम्यवाद पे आज के साम्यवादी जाते तो कभी कारपोरेट घराने और कभी पूंजीपति पार्टियों से समझौता नहीं करते, उनके साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ते। कांग्रेस सपा और बाकी जो छोटे छोटे दल है उनके साथ जाकर के नहीं लड़ते जो सत्ताधारी दल के साथ है। यह कहते हैं आज के समाजवादी की सांप्रदायिकता मुर्दाबाद। भगत सिंह भी कहते थे कि सांप्रदायिकता मुर्दाबाद और अच्छी बात है, लेकिन भगत सिंह के सांप्रदायिकतावाद और इनके सांप्रदायिकतावाद में अंतर है। भगत सिंह पूरी तरीके से चाहते थे, भगत सिंह वोट का पॉलिटिक्स नहीं करते थे, भगत सिंह समाज की राजनीति करते थे। आज के साम्यवादी किसी प्रकार से सत्ता में आना चाहते हैं और उसके लिए नाना प्रकार के नारा देते हैं जो भगत सिंह की कब्र स्वयं खोद रही है।
सर, क्या एक 30 साल का लड़का आने
जी
वाले 15 से 20 सालों के अंदर देश आजाद हो जाएगा, ऐसी उम्मीद रखने वाला, और वर्तमान में आगे के 15-20 साल बाद मेरा देश आजाद होगा ऐसा कहने वाले, सर इस तरीके का एक नौजवान ऐसा कह रहा है कि मेरा आने वाला देश 15 साल बाद आजाद हो जाएगा, सर तो इसको किस तरीके से देखते हैं, उनको देशभक्ति किस तरीके से बता सकते हैं?
यह देशभक्ति का सबसे बड़ा जज्बा है, क्योंकि वह नौजवान अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार था। और वह इसलिए न्यौछावर करने के लिए तैयार था कि मैं जब अपना सर्वस्व न्यौछावर करूंगा तो हमारे साथ बहुत सारे नौजवान अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे और अंग्रेज देश छोड़ करके भाग जाएंगे। भगत सिंह 30 वर्ष की अवस्था में जो करके गए दुनिया के लिए, भारत के लिए, वह आने वाले इतिहास में कोई करने वाला नहीं है। इतना बड़ा कोई इतिहास रचने वाला नहीं है। भगत सिंह लिखने में तेज थे, भगत सिंह पढ़ने में तेज थे, भगत सिंह समझने में तेज थे, परिस्थितियों को समझते थे। और जब वो परिस्थितियों का अध्ययन करते थे, समझते थे, तो उनको यह आभास होता था, उनको यह आशा थी कि आने वाले 10 से 5 वर्षों में हमारा देश आजाद हो जाएगा। तो ऐसे सपना हर नौजवान के पास होना चाहिए कि आने वाले दिन में हमारे साथ क्या होगा और हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके पास आशा ही नहीं है, कोई किरण ही नहीं दिखाई देगी, आप किरण ही नहीं रखेंगे, चिंतन ही नहीं रखेंगे, तो आप दुनिया को क्या रास्ता दिखाएंगे? भगत सिंह तो दुनिया को रास्ता दिखा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आने वाले 10 साल में आजाद हो जाइए। और भगत सिंह का देहांत, भगत सिंह की जो शहादत हुई 23 मार्च 1931 को, और उसके बाद देखिए कि हिंदुस्तान में एक अलग प्रकार की क्रांति जगी। सब लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया कि नहीं, अब आजाद होना है हमको। और 1942 आते आते अंग्रेजों ने स्वयं कहा कि अब हमें आपको आजादी देना है, अपना तैयारी करिए। और 1942 में हमारा जो अगस्त क्रांति हुआ, उसके माध्यम से अंग्रेज देश छोड़कर के भागने के लिए रेडी हो गए। तो भगत सिंह की सोच थी, और भगत सिंह यह जानते थे कि अंग्रेजों का जो साम्राज्यवाद है उसको अब हिला दिया गया है। भगत सिंह जो अंग्रेजों की दीवार जमी थी, उस दीवार को हिला करके उसमें दरार डाल दिए थे। बस आवश्यकता थी कि क्रांति के बल पर उस दीवार को उखाड़ करके फेंक दिया जाए। और भगत सिंह के जाने के बाद हमारे देश के नौजवानों ने, देश के जननायकों ने वो काम किया है। तो हर समय एक क्रांतिकारी व्यक्ति को, हर समय एक लड़ने वाले व्यक्ति को कभी निराशा नहीं होना चाहिए। जब हम लोहिया के निराशा के कर्तव्य पढ़ते हैं, तब पता चलता है कि भगत सिंह कितने आशावान थे, भगत सिंह कितने आशा रखते थे। तो हर व्यक्ति को एक आशा रखना चाहिए कि होगा। और भगत सिंह तो दुनिया के उस समय क्रांतिकारियों के सिरमौर थे, वो तो पूरी दुनिया की क्रांति देख रहे थे। तो उनको आभास हो चुका था कि अंग्रेजी सरकार जो है 10 से 15 साल से ज्यादा टिकने वाली यहाँ पे नहीं।
सर, क्या भगत सिंह जी ऐसे जो क्रांतिकारी बने, आज सबके सिर मोर है, तो
जी
उनको सबसे ज्यादा मार्गदर्शन कहाँ से मिला और किन किन लोगों के मार्गदर्शन में उन्होंने यहाँ तक के जो सफर है पार पहुंचे सर, शिखर तक?
देखिए, ये तो एक ऐतिहासिक और थोड़ा सा जनरल नॉलेज का सवाल हो जाता है, लेकिन
जी
आप देखिए कि भगत सिंह के परिवार को उठा करके देखिए तो उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। उनके दादाजी भी उसमें हिस्सेदारी करते थे, उनके पिताजी भी हिस्सेदारी करते थे, उनकी दादी भी हिस्सेदारी करती थी। और सबसे ज्यादा प्रभाव उन पर जलियांवाला कांड का पड़ा कि
जी
जब वो छोटे थे और बाग में गए और देखे कि हमारे हिंदुस्तान के इतने लोगों को अंग्रेजों ने मार दिया, तो प्रभावित होकर बोले कि आखिर क्यों मार दिया भाई, इनको क्या कर रखे, क्या कारण था। और वहीं से उनके अंदर जज्बा आई कि नहीं, हम अपने देश को आजाद करेंगे। और उनके परिवार का बहुत बड़ा उनके ऊपर प्रभाव रहा। कभी उनके परिवार रोकने का प्रयास किया, लेकिन उस तरीके से दबाव नहीं डाले कि तुमको यह काम नहीं करना है। वो घर द्वार छोड़ करके चले गए, अपने दादी को पत्र लिखते, अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं, अपने माँ को पत्र लिखते हैं, यहाँ तक कि अपने छोटे भाई को भी पत्र लिखते हैं। और उसके बाद हो जाते हैं तो चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, जैसे लोगों से उनका संपर्क होने लगता, पूरा हिंदुस्तान में घूमते हैं। तो उनके ऊपर पूरे हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे उस समय, उनका प्रभाव था। और उनका अपना एक अलग सोच था कि हमें हिंदुस्तान को आजाद कराना है। तो उनको कहीं ना कहीं जो प्रेरणा मिली, वह अंग्रेजों की यह गलत नीतियां और कठोर नीतियां भी थी कि उनको प्रेरित की कि नहीं, आपको देश आजाद कराना है भगत सिंह, और उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने।
ओके, तो ये थे डॉक्टर अनंत सर जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती पर हमें बहुत सी जानकारियां प्रदान की। डॉक्टर साहब, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भाई, और भगत सिंह के जन्म शती पे मैं उनको सतत नमन करता हूँ।
जी, छिंगड़ा वाले सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।